बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। और अंदाज़ जहां में आज हम पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़ जहां। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता हफ़्ते जुमेरात को पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वज़ीर आज़म को मुजरिम करार देते हुए सज़ा के तौर पर अदालत के इजलास तक खड़े रहने की सज़ा सुनाई। इस अलामती सज़ा के बाद पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो गई है कि वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को ओहदे पर बाकी रहने का हक़ है या उन्हें ओहदा छोड़ देना चाहिए। हिज़्ब इख़्तिलाफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ती हलकों का इसरार है कि सज़ा याफ्ता होने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के पास वज़ीर आज़म के ओहदे पर बाकी रहने का कोई कानूनी और अखलाकी जवाज़ नहीं रहा है। ख़ुद वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि उनके खिलाफ फैसला मुनासिब नहीं है। उन्होंने अदालत से इंसाफ मांगा था, जो बकौल उनके उन्हें नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के तरफदार हलकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सियासी नौइयत का है, बिनाबरी इस फैसले की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को ओहदा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि ख़ुद पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास ओहदे पर बाकी रहने का अगर कोई कानूनी जवाज़ है भी तो अखलाकी जवाज़ वो खो चुके हैं, बिनाबरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। चुनांचे सनीचर को अंदाज़े जहां में साबिक़ सेनेटर सफदर अब्बासी ने कहा था कि पार्टी की आबरू और मुल्क के को इंतशार से बचाने के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को ओहदा छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनका कहना तो ये था कि इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। जबकि हिज्ब इख्तलाफ की जानिब से हुकूमत पर सख्त तरीन हमले किए जा रहे हैं। इसी के साथ तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी वजारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी न हुए तो वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और सुनामी लाएंगे। मार्च का ऐलान मुस्लिम लीग नून ने भी किया है और इसके जवाब में पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद की तरफ मार्च करती है तो पीपल्स पार्टी के अराकीन पंजाब लाहौर की तरफ मार्च करेंगे। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और कालम नवीसों की अक्सरियत हिज्ब इख्तलाफ के मौक़िफ़ की हिमायत कर रही है। अलबत्ता इस दरमियान बाज़ तज़िया निगारों ने सियासतदानों की रविश को ख़तरनाक और फौज को इख्तदार पर कब्ज़ा करने की दावत से ताबीर किया है। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान की सीनियर तज़िया निगार फौजिया शाहिद साहिबा मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फौजिया शाहिद साहिबा, आदाब अर्ज़ है। फौजिया शाहिद जी, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सियासी माहौल काफी गर्म हो चुका है, आपके ख्याल में ऊंट किस करवट बैठेगा?
देखिए, अभी जो सूरत हाल है इसको हम इतनी आसान नहीं ले सकते। जिस तरह आपने इब्तदाइया कहा है, जिसमें आपने दोनों फ्रीकैन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं या अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी आपने बात की है। लेकिन अगर हम ये देखें तो हमें दो तीन चीज़ें देखना पड़ेंगी। एक तो सबसे ज़्यादा जो मैं जिसको बहुत ज़्यादा संजीदा समझती हूँ, हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर आज़म के जो वकील हैं एतज़ाज़ अहसन, वो एक बिल्कुल ये तासुर देने में कामयाब हो चुके हैं कि जो वज़ीर आज़म को सज़ा हुई है उसमें वो सज़ा बनती नहीं थी। ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरह वाज़े किया है वो हिस्सा जिसको वो दूसरे हिस्से का नाम देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि तजलील जो है अदलिया, वो तजलील अदलिया का केस नहीं था, ये एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला केस था। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी एक बात जो कही जा रही है कि वो एक ऑर्डिनेंस के हवाले से उस बुनियाद पे सजा देगी। ये एक क्वेश्चन जो है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म पे जहाँ क्वेश्चन हो रहा है, वहाँ बहुत संजीदा क्वेश्चन जो है वो अदलिया के हवाले से भी होने लग गया है। ये तमाम चीज़ें जो है इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और ये एक मैं समझती हूँ कि अब ये इतनी आसान बात नहीं है। जहाँ तक ओपोजिशन का ताल्लुक है, यकीनन ओपोजिशन का एक अपना किरदार है, अपना काम है। ओपोजिशन ने यकीनन जो उन्होंने अपनी बात कहनी है, उन्होंने एतराज़ भी करना है। और जिस तरह वाज़े तौर पे अगर वज़ीर आज़म को अगर सज़ा होती है, तो उन्होंने उसका जो वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा देने के हवाले से उन्होंने अपना मुतालबा भी करना है। लेकिन यहाँ हमें दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहम दिखाई देती हैं। ओपोजिशन, हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो मुत्तहिद है। जब तक ओपोजिशन मुत्तहिद नहीं होती, मैं नहीं समझती कि किसी किस्म का वो कोई दबाव डालने में कामयाब हो जाएगी। और आज भी जैसे अभी थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ का इजलास था, तहरीक इंसाफ के इजलास के बाद जो इमरान खान और उनकी जो दूसरे कायदीन थे, जो अकाबरीन थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन किया है वो नवाज शरीफ की जो मुस्लिम लीग है उस पर अदम एतमाद का ही इजहार किया है। और दूसरी तरफ जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, ये भी एक मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि मुझे दिखाई इसलिए नहीं देता कि लॉन्ग मार्च में जो शिरकत करते हैं उसमें आपका जो देही इलाके हैं या देही आप कह लीजिए कि जो आबादी है उसमें उसकी शमूलियत नहीं होती। अब आ जाती है शहरी आबादी। शहरी आबादी में जब तहरीक चलती है तो उसमें नौजवान तबका यकीनन ज़्यादा एक्टिव होता है। और नौजवान तबके के हवाले से जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया कि इमरान खान सुनामी की बात करते हैं, मियां नवाज शरीफ जो है वो किसी तरह इमरान खान के साथ मिलके तहरीक जो है या लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं करेंगे कि उनको मुझे लगता है कि अंदेशा होगा कि वो सारा जो ये शो कह लीजिए या लॉन्ग मार्च की जो तफसीलात कह लीजिए वो इमरान खान जो है उनको कैश करने में कामयाब हो जाएंगे। ये तो हमारी एक इस वक्त जो मुझे पॉलिटिकल सूरत हाल दिखाई दे रही है। और मैं नहीं समझती कि वो किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होंगी। इसी तरह जब हम जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ देखते हैं तो वो भी अभी इस पोजीशन में नहीं, और वो नहीं चाहती कि कोई लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। तो ऐसी सूरत में एक जो बहुत बड़ी हमें यहाँ दिखाई देती है, अब मुस्लिम लीग अगर नवाज़ है तो उसका वाज़े तौर पे जमात इस्लामी के साथ कोई ना कोई उसमें तावन होगा, या एक कुछ अरसे से जो दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के नाम से जो कुछ रिटायर्ड जज जनरल्स हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके बारे में ज़ाहिर है कि वाज़े तौर पे है कि वो किस इशारे पे कहाँ से कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि वो उसको साथ मिलाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ अगर ज़ाहिर है कि कल को इंतखाबात होते हैं, वो अक्सरियत लेते हैं, इक्तदार में आएंगे, तो वो किसी तरह भी उनके साथ, क्योंकि उन पे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जनरल हमीद गुल हैं, असलम बेग हैं, तो वो उनके साथ भी जाने को शायद तैयार ना हो। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि अभी जो सूरत हाल है इंतहाई इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। पीपल्स पार्टी पे जो है एलिगेशंस भी इस हवाले से आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर पे दबाव भी डाला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दबाव बढ़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। दूसरी जानब मेरा ख्याल है कि जो बहुत अहम चीज़ है जो मैंने पहले बात की है कि अदलिया पे जो एक तवील जद्दोजहद के बाद अदलिया को बहाल किया गया, और उसके साथ साथ हमने ये देखा कि लोगों का एतमाद जो अदलिया की जानब बहुत ज़्यादा हो गया था। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखालफीन हैं वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुल्कगीर जमात है और इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कारकुनों को ये पैगाम देने में कामयाब हो गई है कि अदलिया की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है वो एक उसको आप ये कह लीजिए कि जिस तरह आपने बात की सियासी कह लीजिए, या उसको ये कह लीजिए कि सिर्फ वही जो है मुस्लिम लीग सॉरी पीपल्स पार्टी ही या हुक्मरान जमात ही क्यों टारगेट हो रही है। ये एक बहुत संजीदा सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। और मैं जो मुझे ज़्यादा मैं दुख से भी कहूँगी, क्योंकि इदारे बहुत मुश्किल से बनते हैं, इदारों का एतमाद बहुत मुश्किल से होता है, और पाकिस्तान में चूँकि एक तवील मार्शाला हमेशा रहे हैं, इदारों का तकद्दस इदारों पर एतमाद जो है वो हमेशा ही ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। अदलिया पे जो एतमाद होने जा रहा था उसको भी थोड़ी सी अगर धचका कहीं लगता है तो वो एक ज़्यादा अफसोसनाक बात होगी, क्योंकि अभी तक जो फैसला का जो सूरत हाल, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि एतजाज़ अहसन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में ये मैसेज देने में कामयाब हो चुकी है कि जो फैसला किया गया है, ख़ास तौर पे तजलील अदालत वाला जो हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है, वो केस की नोयत से हटके है। क्योंकि जो 13 फरवरी को उस वक्त चार्जशीट लगाई गई थी, उसमें तजलील अदालत वाली बात नहीं थी, तोहीन अदालत की बात थी, वो फैसला क्यों शामिल किया गया? और जो सबसे अहम क्वेश्चन हो रहा है कि तफसीली फैसला क्यों नहीं आया, ये भी जो है अदलिया के लिए क्वेश्चन का बाइस बन रहा है। और तफसीली फैसला आने के बाद जो यकीनन किसी भी मुजरिम को जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको जो हक हासिल है अपील का, वो यकीनन अभी अपील का हक वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। अब सूरत हाल यहाँ ये पैदा होती है कि जब हम ये बात कर रहे हैं तो उसमें क्या मुस्लिम लीग नून का जो मौक़फ़ है वो ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़फ़ है वो ठीक है? मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत तफसीली जो आम बहस को करने की बजाय कानूनी माहरीन की जो बात है उसको हमें लेना पड़ेगा। और यहाँ कानूनी माहरीन भी जो है, जब उनसे बात की जाती है तो वो भी खासे हद तक तकसीम दिखाई देते हैं। और उसमें बहुत बड़ी तादाद जो बहुत सीनियर यहाँ वकला हैं या सीनियर जो हमारे कानून दान हैं, उनका मौक़फ़ भी काफ़ी हद तक वो एतजाज़ अहसन के करीब दिखाई देता है, जो वज़ीर आज़म के वकील थे। और उनका ये कहना था कि जो ऑर्डिनेंस के तहत जो सज़ा दी गई तोहीन अदालत की, ऑर्डिनेंस जो है वो चूंकि 14 उसका 4 माह की मुद्दत होती है, उसके बाद ऑटोमेटिक लैप्स हो जाता है। यहाँ एक छोटी सी बात जो पाकिस्तान के कानून के हवाले से है वो मैं ज़रूर यहाँ दोहराना चाहूँगी। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक एक यहाँ 1962 में जो जर्नलिज्म उस पे सहाफत पे एक पीपीओ का जो है प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस लगाया गया था। और जब हमारे यहाँ एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी जिसमें मेराज खालिद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है उसको ख़त्म करा दिया था। और जब वो उसको जाहिर है कि वो कानून साजी उस पर नहीं हुई थी, वो ख़त्म उस तरह नहीं हुआ था, तो 4 माह बाद दोबारा उसको बहाल करते हुए, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस था और ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया था, उसको मुकम्मल तौर पे कानूनी तहफ़ नहीं दिया गया था, तो उसके तहत भी कई जर्नलिस्टों को मुख्तलिफ औकात में जो है सज़ा भी हुई, इदारों के हवाले से भी वो मुतासिर हुए। मकसद सिर्फ ये है कि जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी मुद्दत हमेशा 4 माह की यहाँ होती है, उसको कानूनी तहफ़ देने के लिए पार्लियामेंट में ले जाया जाता है, जब पार्लियामेंट में नहीं जाता तो वो ऑर्डिनेंस जो है लैप्स हो जाता है। तो यहाँ ये भी बहस जो है वो भी देखने वाली है कि क्या वो ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करता था, उसका वजूद बरकरार था या वो ख़त्म हो गया था। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिस पे मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी रश करने की, फौरी तौर पे मुतालबात की, क्योंकि पाकिस्तान जिस सूरत
बहुत
हाल
बहुत
से
शुक्रिया।
दोचार है, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से जब हम देखते हैं, या दूसरा हम ये देखते हैं कि बिल्कुल हमारे सर पे बड़ी कुव्वतें अमेरिका की शक्ल में, नेटो की शक्ल में मौजूद हैं, क्या ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर किसी तरह का अनरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या होगा? और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात जो है वो भी बात हम की जाती है, और उस पर भी अक्सर ये सवाल आता है कि
शुक्रिया शुक्रिया फौजिया शाह,
पाकिस्तान में
हम आपकी तरफ
नजरिया
दोबारा
ज़रूरत के
आएंगे
तहत
और नाज़रीन
बेशुमार
टेलीफोन लाइन
इकदामात
के
किए।
जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अहम रहनुमा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली शैला रज़ा साहिबा से। शैला रज़ा साहिबा
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी, सुप्रीम कोर्ट के, वालेकुम सलाम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद काफ़ी हमले हो रहे हैं और मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, बल्कि हुकूमत की तहलील की बात भी की जा रही है के, और लोगों का कहना यह है कि सजा याफ्ता होने के बाद वजीर आजम के पास ना कानूनी जवाज रह गया है ओहदे पर बाकी रहने के लिए और न ही अखलाकी जवाज है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया।
जी
सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को सलाम अर्ज करती हूँ जो जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, खास तौर पर वो खातून जो मुझसे पहले तबसरा फरमा रही थी, माशाल्लाह मैं उनकी तबसरे को, उनकी एनालिसिस को सराहती हूँ। और जहाँ तक आपने मुझसे बात की तो देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की अदलिया का किरदार बहुत ही एक मुतनाज़े सा रहा है। जहाँ हम मौलवी तमीज़ुद्दीन केस देखते हैं, वहाँ से गुलाम जीलानी केस भी देखते हैं, बेगम नुसरत भुट्टो केस भी देखते हैं, फिर सारे नजरियाए जरूरत के भी केस देखते हैं, फिर भुट्टो साहब का केस देखते हैं भुट्टो। तो उसके बाद जब हम ये बात करते हैं तो कहा जाता है कि जी उस वक्त अदलिया आजाद नहीं थी। ठीक है, इस वक्त अदलिया आजाद है, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का खून इसमें शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की जद्दोजहद इसमें शामिल है। वजीर आजम ने जो आते ही पहला काम किया था वो अपने फंड से उन जजेस की तनख्वाहें जो रुकी हुई थी उस डोगर कोर्ट ने रुकी हुई थी, जिसको अब ये तस्लीम नहीं करते, वजीर आजम ने अपने फंड से दी थी। बड़ी अच्छी बात है कि अब अदलिया आजाद है। जब आजाद अदलिया है तो हम चाहते हैं कि वो इतनी आजाद ही रहे जितनी वो जो है वो मेमो के केस में हमें नजर आती है, जहां वो मंसूर एजाज के लिए कमीशन भी भेज सकती है और जहां वो हुसैन हक्कानी के लिए ये सब कुछ नहीं करती। तो बात ये है कि जब हम अभी भी देखते हैं तो हमें बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी पार्टी, जिसकी रिवायत है कि उसने इदारों का एहराम किया, और जनाब जुल्फकार अली भुट्टो, फिर हम पीछे जाएंगे, उन्होंने भी माय लॉर्ड कहते हुए ये तो जरूर लिख दिया कि मैं डिक्टेटर के हाथ मारना पसंद करूंगा, तारीख में नहीं और कब्र से लेट के सियासत करूंगा, लेकिन इदारों को नहीं टकराने। या वहां हम ये देखते हैं कि हम भी आज यही कर रहे हैं कि वो केस जो 11.5 साल चलते रहे, जिनके कागजात जब वहां से मंगवाए गए तो तकरीबन 1700 पेपर्स आए और वहां से यही आया कि जी वहां पे कुछ नहीं है, 10 दिन का वहां टाइम दिया गया, कोई नहीं आया किसी भी किस्म की, ना वहां शहादतें मिली ना यहाँ, बल्कि यहाँ ये हुआ कि जस्टिस कयूम की टेप्स मिली सब कुछ। तो अब वही केस जब वो खोले गए हैं तो एनआरओ में 8032 केस में यही एक केस सबसे बड़ा है। अगर केस बड़ा है तो इसमें 248 को डिस्कस करना, 48 डिस्कस नहीं हो रही, एक पैराग्राफ 178 वहां के जी आपने तौहीन अदालत की है। अब यहाँ पे बड़ी बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बादी नजर आप बेईमान नजर आते हैं, ऑनेस्ट नहीं नजर आते वजीर आजम साहब, तो उन्होंने तो एक कॉन्सेप्ट अपना कर लिया ना, अपना एक माइंड बना लिया और उन्होंने कहा आपने तौहीन अदालत की। तो अब जिन लोगों ने ये कंप्लेन, जो कंप्लेनर है वही मुद्दई बन गया, जो मुद्दई है वही मुनसिफ बन गया। तो ये एक बात थी जिसको हम 10A करके, 10A हम यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम राइट्स ऑफ फर्स्ट सिटीजन के हिसाब से हम इसको डिस्कस कर रहे थे, और हम ये सारा केस यहाँ पे इस तरह कर रहे थे कि एक तो ये तौहीन अदालत नहीं है, वजीर आजम ने जो भी किया अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस किया क्योंकि वो उसके पाबंद है, और दूसरी बात यह है कि वो लोग जिन्होंने ये कहा अदालत की है वो मुद्दई है, वही लोग इस केस में जज नहीं हो सकते। तो ये तो एक हमारा पॉइंट था, लेकिन इसको नहीं माना गया और एक जो है 12 फरवरी को ये चार्ज फ्रेम किया गया कि आपने तौहीन अदालत की है और आपने जो है वो डिस ओबीडियंस शो किया है, यानी कि आप सिविल कॉन्टेम्प्ट के मुर्तकिब हुए हैं। ये केस चलता रहा, हम 10A पे बात करते रहे और ये कहते रहे कि ना आप ये चला सकते हैं ना ये तौहीन अदालत है, लेकिन बहरहाल दुनिया ने देखा कि वही हमारे वकील साहब जो कि सबके पसंदीदा वकील थे, सबके कंधों पे रहते थे, जिनके हर दलाइल सही थे, उनके दलीलों को नहीं माना गया और तो इसमें जो है वो सजा आई। अब बहुत ही अफसोस की बात है कि सिविल जो है वो कॉन्टेम्प्ट का चार्ज है और सजा जो है वो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट की आई है, और वो भी पूरी नहीं आई। क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट जब भी आता है वो तफसीली फैसला आता है और मुजरिम को चार्ज पूरा जो है वो फैसला मिलना चाहिए, उसमें कहीं भी 631G इतलाक नहीं होता। लेकिन अब ये तो एक हमने किरदार डिस्कस किया उस अदालत का जो कि जस्टिस दीदार हुसैन शाह को ऑपोजिशन के नुक्ताए नजर पे कि वो लाड़काना से हैं, पीपल्स पार्टी के MPA रह चुके हैं, ये भूल के कि उसके बाद वो जज रह चुके हैं, उनको हटा देती है। हम ये भूल के वहीदा शाह को एक थप्पड़ की ये सजा मिलती है कि वो डिसक्वालिफाई हो जाती है। उसी दिन जीतने की खुशी में मर्दान में दो आदमी मरते हैं, वहां कुछ नहीं होता। उसी दिन जो है वो खवातीन को वोट डालने का हक नहीं दिया जाता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता क्योंकि उनका ताल्लुक हम समझते हैं कि न सिंध से था न पीपल्स पार्टी से था। हम इसी नजर में ये भी देखते हैं कि हामिद सईद काजमी जो कि एक चार्ज में 3 साल से बंद है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लेकिन उनकी जमानत नहीं होती। हमने इस फैसले को भी सुना, अपने अफसोस का इजहार किया। इंट्रा कोर्ट अपील हमारा राइट है, हम उसमें जाएंगे, लेकिन जब हमें हेलो
जी जी
जब हमें फैसले की कॉपी मिल जाएगी।
जी
अब आप मुझे बताइए कि इसमें सियासी बहरान कहाँ है जो ये बात करते हैं। सिर्फ एक ऑपोजिशन जो कि है ही अपोजिशन, वो हमारे खिलाफ है, सारी इत्तेहादी पार्टियां हमारे साथ खड़ी हैं। तीनों सूबों में ऑपोजिशन का जो किरदार है वो सबको मालूम है कि ऑपोजिशन की क्या अहमियत है तीनों सूबों में। सिर्फ एक सूबे में वो है, पंजाब की लॉयर बार एसोसिएशन हमारे साथ जगह की खड़ी है। ये एक मुतनाज़े फैसला है और हम इसमें अपील का हक रखते हैं। हम नहीं समझते कि हम इसमें अखलाकी बाइंडिंग है क्योंकि हमारे वजीर आजम तो 3 दफा इसमें गए हैं और पहला वजीर आजम जो थे नवाज शरीफ साहब वो गए थे तो उनका कंटेम्प्ट माफ कर दिया गया था। और मैं एक शख्स की बहुत ही इज्जत करती हूँ, नासिर असलम जाहिद साहब की, उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट तो कुछ भी नजर नहीं आता, ये तो एक जिद है, एक अना का मसला चल रहा है और ये एक सियासी मसला है। और मेरी 20 साल जिंदगी में सिर्फ एक कंटेम्प्ट हुआ जिसमें मैंने 500 फाइन किया, इसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं, ये तो एक सियासी बहस है। तो यहाँ पे हमें बड़े पढ़े लिखे लोग जो है वो ये कहते नजर आते हैं। और रही बात, अब आपने दूसरी बात की इखलाकी, तो जनाब मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इखलाकियात का सबक हमारे ही पास है? क्या हम ये नहीं समझते कि इखलाकियात का मुजाहरा अब दूसरों को करना चाहिए और उन्हें ये समझना चाहिए कि आज जो है वो इस मुल्क में जो जमहूरियत है, जो ये इदारे हैं, ये हमारी कुर्बानी है। हम कैसे हर दफा अपने वजीर आजम को जो है दूसरों की ख्वाहिशात पे कुर्बान करते चले जाएं? जिन मुहज़्ज़िब ममालिक की आप बात करते हैं, क्या वहां पे कभी इतना अरसा जमहूरियत से ज्यादा डिक्टेटरशिप रही है? क्या वहां की अदलिया का ये किरदार रहा है? क्या वहां की ऑपोजिशन ऐसी है कि उसे जब सजा हो तो वो अपील में भी ना जाए, एक्सेप्ट करे अपनी सजा को और बाहर चली जाए मायदा करके? क्या वहां पे जो है इस तरह से है कि हुकूमती लोगों पे जूते चाट तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी ना दिया जाए? तो सारी अखलाकियात हमारे लिए हैं। हम इन अखलाकियात को, अगर ये अखलाकियात है हम नहीं मानते इसे, और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करें और हमारा फैसला अवाम देंगे। और अवाम ने उसी सुबह हमें फैसला, जिस सुबह को वजीर आजम को कन्विक्ट किया गया उस फैसले के बाद अवाम ने उसी शाम हमें PP 190 दिया है।
जी,
इस
बहुत
तरह
बहुत
के वो सीट जहां हम फाइट में भी नहीं होते थे,
जी,
वहां पे मुस्लिम लीग एन का कैंडिडेट जीतता था, मुस्लिम लीग एन का कैंडिडेट था, शाह महमूद कुरैशी के छोटे मुरीद थे, उनकी पूरी सपोर्ट उन्हें हासिल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखाया कि एक अदालत अवाम की है और अवाम की अदालत ने हमें सुरखरू किया है और यही है और यही हम समझते भी हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, हम आएंगे आपकी तरफ दोबारा और चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां बैरिस्टर यूसुफ अख्तर साहब मौजूद हैं। यूसुफ अख्तर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
जी यूसुफ अख्तर साहब, ये जो फैसला आया है अदालत का, इसमें कुछ कानूनी निकात उठाए जा रहे हैं, आपने अगर गुफ्तगू मुलाहजा फरमाई हो मोहतरमा शहला रजा की, डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली, तो उसमें कुछ कानूनी मसाइल हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जिस जुर्म की सज़ा दी गई है उसका जिक्र चार्ज शीट में था ही नहीं। दूसरी बात जो खुद एतजाज अहसन ने अदालत में भी उठाई थी कि जो बेंच मुद्दई है वो ट्रायल नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे आप ये जो कुछ कानूनी निकात उठाए जा रहे हैं उनके बारे में?
जी हाँ, बहुत ही अपना दिलचस्प बहस जारी है
जी।
और लेकिन जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है एतजाज अहसन साहब का, उनकी काबिलियत में तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो मामले को इंतहाई कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, इंतहाई कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि एक आम आदमी मुल्क का एक आम आदमी और शहरी जो है वो कानून की मुँहशगाफियों से इतना ज़्यादा वाकिफ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो 63(1)(g) की बात कर रहे हैं वो क्रिमिनल जो कॉन्टेम्प्ट है वो अट्रैक्ट करता है उसको, लेकिन हमें देखना ये है, ख़ास तौर पर मुझसे पेशरो जो दो ख्वातीन हैं, फौजिया शाहिद साहिबा और शैला रज़ा साहिबा, ख़ास तौर पर शैला रज़ा साहिबा तो डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो उनको आईन और कानून का बहुत ज़्यादा इल्म होगा। तो ये देखिए कि अगर जो चार्ज है वो कॉन्टेम्प्ट का है, और कॉन्टेम्प्ट जो है उसका अगर उर्दू तर्जुमा आप करें तो वही तजीक होता है या नहीं होता, कोई बताइए कि जब मुल्क के वजीर आजम के ख़िलाफ़ जो चार्ज लगा है वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है, तो कॉन्टेम्प्ट कहते किसे हैं? जब आप किसी को जलील करें, जब आप किसी का मजाक उड़ाएं, जब आप तमस्खुर फरमाएं किसी से, तो उसमें तो वो चीज़ इन बिल्ट मौजूद है। अब उसको मुँह शगाफियाँ करके सिविल और क्रिमिनल के चक्कर में डालकर और पूरी कौम को उलझा दिया जाए, तो ज़ाहिर है कि वो वकील की जो शातराना बातें होती हैं वो बिल्कुल अयां है इससे। अब ये देखिए कि जो कह रहे हैं कि जो चार्ज है और जो सज़ा है, सज़ा भाई डिसक्वालिफिकेशन की नहीं है। उन्होंने कहा है इट मे अट्रैक्ट 63(1)(g), इसलिए हम सज़ा कम दे रहे हैं मे, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बिल्कुल कतई है। तो ये देखिए उनको जो सज़ा दी गई है वो थी ता बर्खास्त अदालत, उनका जुर्म यह था कि उन्होंने कोर्ट की हुकुम अदूली की, और एक मरतबा नहीं 10 मरतबा हुकुम अदूली की, उसके बाद भी की, और अब भी बार बार कह रहे हैं कि न सिर्फ मैं बल्कि आने वाला वज़ीर आज़म कोई भी जो है वो भी ख़त नहीं लिखेगा। तो उससे पहले जो वज़ीर क़ानून थे और पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा थे, बाबर अवान साहब थे या और भी जो थे, वो एक दफ़ा नहीं उन्होंने कहा था ओवर माई डेड बॉडी, और ये फरमा रहे हैं अपना वज़ीर आज़म साहब कि मैंने उनकी समरी पर अमल किया। वो समरी क्या थी? बाबर अवान की थी, वजारत क़ानून की थी, और वो सब यही कह रहे थे कि अगर उन्होंने ये कहा था कि आप ना लिखें, लेकिन इनको अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करके फ़ैसला करना चाहिए था कि वो समरियों पर अमल करेंगे या अपनी अक़ल के मुताबिक वो फ़ैसला करेंगे। अगर आपने उनकी समरियों के मुताबिक फ़ैसला करना चाहा ये समझते हुए भी कि वो गलत हैं, तो उसका मतलब यह है कि खमियाजा तो आप भुगतेंगे, तो उस और उसको आप तस्लीम कर रहे हैं, एतजाज़ आसन साहब भी तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ कॉन्टेम्प्ट जो है वो तो हो गई और उसकी सज़ा भी हो गई। अब वो सज़ा 6 महीने की भी हो सकती थी, वो सज़ा 1 मिनट की भी हो सकती थी, वो 32 सेकेंड की हो या 1 सेकेंड की हो, सज़ा हो चुकी और वो सज़ा पूरी भी हो चुकी, और उसके बाद जो डिसक्वालिफिकेशन का मतलब है वो अभी तक फैसला नहीं, वो उसी का फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन असल जो मामला है कॉन्टेम्प्ट का वो पूरी हो चुकी, वज़ीर आज़म साहब उसके मुर्तकिब हो चुके और उसकी सज़ा भी भुगत चुके। सज़ा वो 32 सेकेंड की थी, डिसक्वालिफिकेशन की नहीं थी। वो होती भी है या नहीं होती वो अलग बात, अगर वो हो जाएगी तो 5 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे असेंबली से भी और दूसरी तमाम चीज़ों के लिए भी, लेकिन इस वक्त देखना हमको ये है और तमाम दुनिया ये देख रही है कि किसी भी महज़्ज़ब मुल्क में जो सरबराह हुकूमत है उसको कटहरे में लाया जाए और सही लाया जाए, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानूंगा, और न सिर्फ मैं बल्कि मेरे बाद के आने वाले भी नहीं मानेंगे। तो कोई भी आदमी ये बताए, दुनिया का कोई भी बाशऊर और जी शऊर आदमी ये बताए कि ये कॉन्टेम्प्ट है या नहीं है, खुली तजीक है या नहीं है, और कॉन्टेम्प्ट कहते किसे हैं सब जानते हैं, हम उर्दू में बात कर रहे हैं कि वो तजलील को कहते हैं, तजीक को कहते हैं, मजाक उड़ाने को कहते हैं, और इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि आप मुल्क की जो अदालत उज़्मा है उससे ऊपर कोई अदालत नहीं है उसकी बात को ना माने, उसको फ्लाउट करें, उसको डिसओबे करें, और एक आम आदमी नहीं ملک کا وزیر اعظم کرے ایسی بات اور اس پر وہ پھر فخر محسوس کرے. یعنی وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو آئین کو کا تحفظ کر رہا ہوں, آئین کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں, میں نے کیا کیا ہے. تو بھائی آپ اس سے زیادہ بڑھ کر کریں گے بھی کیا کہ تمام دنیا میں آپ نے ملک کی عدالت عظمیٰ کی تصدیق کی ہے, اس کا مذاق اڑایا ہے, اس کی حکم عدولی کی ہے, ایک آمد بھی نہیں. تو آپ کون سی مثال قائم کر رہے ہیں؟ ملک کا کوئی بھی دوسرا فنکشنری وہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ جب سربراہ مملکت نہ کرے کچھ اور سربراہ حکومت بھی کھلے عام یہ کہے کہ میں نہیں مانتا, تو ملک میں قانون کی حکمرانی کہاں سے آئے گی؟ شہلا رضا صاحبہ فرمائیں یا فوزیہ شاہد صاحب فرمائیں یا اعتزاز احسن صاحب فرمائیں کہ تزیق اور کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بھائی قوم کو مخمصے میں کیوں ڈال رہے ہیں, قوم کو کیوں الجھا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کوئی پوزیشن مل جائے آپ کو؟ قانون کی حکمرانی اسے بالکل نہیں کہتے. تو اب اگر میاں نواز شریف سے آپ کو شکایتیں ہوں گی, مجھے بھی ہو سکتی ہیں, اوروں کو بھی ہو سکتی ہیں, لیکن وہ تو اپوزیشن ہیں, اپوزیشن کا کام جو ہے وہ تو مخالفت کرنا ہے. چلیے ہم کو ڈسمس کرتے ہیں, عمران خان کو ڈسمس کرتے ہیں یا جو اور لوگ کر رہے ہیں, بحیثیت قانون دان آپ یہ فرمائیں کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ یہ کہیں کہ جی ہم حکم نہیں مانیں گے, آپ تو یہ کہیں کہ ٹھیک ہے احتجاجاً مان لیتے ہیں اگرچہ صحیح نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اس کی آپ اپیل میں جائیے اور آپ کا حق ہے اپیل میں جانے کا, کوئی آپ کو ڈینائی نہیں کرتا, اس کے بعد اگر آپ چھٹ جاتے ہیں اسے تو ٹھیک ہے. تو یہ جو منہ شگافی ہے, میں پچھلے 3-4 دن سے سن رہا ہوں کہ چارج اور تھا اور سزا اور ہے, نہیں, چارج میں اور سزا میں کوئی فرق نہیں ہے. سزا ابھی جو آپ کو 32 سیکنڈ کی دی گئی وہ سزا تھی, اس کے لحاظ سے آپ کنوکٹ بھی ہوئے, اس کے لحاظ سے آپ سزا یافتہ بھی ہیں, کنوکٹڈ کرمنل ہیں آپ. تو جب آپ کنوکٹڈ کرمنل ہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں کہ ملک کا یعنی حکومت کا سربراہ ہوتے ہوئے آپ ایک ایسی پوزیشن میں رہیں کہ جس میں آپ کے احکامات کو نہ مانا جائے. وہ اور کیوں کوئی مانے, جب آپ سپریم کورٹ کے حکم کو نہیں مانتے تو آپ کے احکامات کو کون مانے گا؟ تو مشینری جو ہے گورنمنٹ کی وہ تو ختم ہو گئی, رول لاء تو ختم ہو گیا, جو پولیس کیوں مانے, فوج کیوں مانے, دوسرے الفا جو فنکشنریز ہیں وہ کیوں مانے, تو وہ تو بات ختم ہو گئی. اس لحاظ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف قانونی طور پر بلکہ اخلاقی طور پر بھی قطن کوئی اس بات کا جواز نہیں رہا, قطن اس بات کا جواز نہیں رہا کہ آپ وزیر اعظم کی پوزیشن پر ہیں. اور پھر آپ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہتے ہیں, اور سپریم کورٹ سے نکل کے بعد جب آپ جاتے ہیں اپنا پارلیمنٹ میں تو وہاں یہ فرماتے ہیں کہ اسپیکر صاحبہ اپنی عدالت لگائیں. تو ایک طرف ملک کی سپریم کورٹ ہے اور دوسری طرف آپ اسپیکر کو سپریم کورٹ سے بھی افضل بنا رہے ہیں, یعنی اداروں کے اندر ادارے بنا رہے ہیں, وہ کلیش آپ کر رہے ہیں. تو ملک کا جو قانون ہے اور ملک میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ کہاں سے چلے گا؟
بہت بہت شکریہ.
اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لا یعنی بحث جو ہے اس کو ختم کریں اور آپ جو ہے اس کو چھوڑیے حکومت کو, اور اس کے بعد اپنا ایک نئے انتخابات کا ڈول ڈالیے, اس کے بعد بھی اگر آپ آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ ریفرنس جو سپریم کورٹ نے بھیج دیا ہے اسپیکر صاحبہ کو, اسپیکر صاحبہ کو قطن کوئی حق نہیں ہے اس میں. اگر یہ آپ یہ آرٹیکل پڑھے, میرے سامنے آئین کی کتاب پڑی ہوئی ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال پیدا ہو کہ کسی شخص کو سزا ہو گئی ہے یا نہیں, اس صورت میں اسپیکر صاحبہ یا صاحب جو ہیں وہ 30 دن کے اندر اس کو الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گی. ان کا قطن کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس پر وہ عدالت جمع کر بیٹھیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر اپنا فیصلہ کریں. ہاں اسی شق میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایسی بات ہو جاتی ہے تو اسپیکر 30 دن کے اندر اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیج دے گا اور الیکشن کمیشن کنسیڈر کرے گا کہ کیا واقعی یہ اس قابل ہیں کہ ان کی جو اہلیت ہے, رکنیت جو ہے اسمبلی کی, وہ قائم رکھی جائے یا نہ رکھی جائے. تو ان کا فیصلہ ہو سکتا ہے, ان کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ پروویژن موجود ہے. اسپیکر صاحبہ کا قطن کو نہیں ہے, وہ صرف ایک لیٹر باکس ہے. تو اس لحاظ سے یہ تمام بحثیں جو ہیں یہ لایعنی ہیں, اور ملک کا مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب جیسا آدمی جو کیونکہ بری طرح ناکام ہو گئے اس کیس میں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو انہوں نے پوری کوشش کر لی پہلے اس کو کورٹ کو الجھانے کی, 7 ججز کو الجھانے کا, अब वो सुप्रीम कोर्ट कितने ही बड़े आप क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते।
जी, हाँ, बहुत
आप में जाइए, वहाँ एक लार्जर बेंच तश्कील होगा, 8 का या 10 का या पूरे 17 का, तो उस सूरत में अगर वो इसको रद्द कर देते हैं तो कर देते हैं।
शुक्रिया।
उस वक्त तक
शुक्रिया बैरिस्टर यूसुफ अख्तर साहब,
सुप्रीम कोर्ट का नहीं आ जाता यानी अपील का, तो उस वक्त तक आप एक कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं और इस पर अखलाकी कोई जवाज नहीं, ना कानूनी जवाज है कि आप वजीर आजम के अहदे पर रह सकें।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन, ये तो कानूनी बहस है, लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल आई हुई है और पाकिस्तान के बाज तजिया निगार जो मौजूदा सूरत हाल है इसको ख़तरनाक करार दे रहे हैं, इसको मुल्क की सलामती के लिए बेहतर नहीं समझ रहे हैं। हमारे साथियों ने एक थोड़ी सी गुफ्तगू रिकॉर्ड करके भेजी है सीनियर तजिया निगार नज़ीर नाजी साहब की, मुलाहिज़ा फरमाएं।
मुशर्रफ का जायज़ बैठा था, याया का जायज़ बैठा था, वो ज़ियाउल हक का जायज़ बैठा था, यहाँ कौन जायज़ होता है? तो वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक अदलिया तो कह देती है कि ये गलत है, ये डिस्क्वालीफाई हो गया। आइन तोड़ने वालों को तो कभी उसने नहीं कहा कि ये जायज़ है ये गलत है।
जी नाज़रीन, हम ये भी बताते हैं कि नज़ीर नाजी साहब ने अपने आज के कालम में जो जंग में शाया हुआ है साफ और वाज़े तौर पर लिखा है कि सियासतदानों की मौजूदा रविश इंतहाई ख़तरनाक है और बल्कि उनके मुताबिक ये बार बार इख्तदार पर कब्ज़ा करने वाले इदारे को तरगीब दिलाने, बल्कि खुली दावत और बुलावा बल्कि मुतालबा है ये कि वो आकर इख्तदार पर कब्जा कर लें। फौजिया शाहिद साहब, आप क्या कहेंगे आप इस बारे में? 3 मिनट का वक्त हमारे पास।
देखिए, एक तो चीज जो अभी एक तो सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह आपने पहले बात की है, मैंने पहले भी उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल कामयाब हो चुकी है ये साबित करने में कि अदलिया का फैसला दुरुस्त नहीं है। दूसरी जानिब, जहाँ तक जो बहुत अहम चीज़ अभी सामने आई है, यकीनन इस वक्त जो अनरेस्ट पाया जा रहा है वो मुल्क के लिए, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि मुल्क की जो सूरत हाल है वो इंतहाई संजीदा है, उसके लिए किसी तरह इस वक्त मुल्क जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और मैं ख़ुद भी ये समझती हूँ कि अदलिया के फैसले का एहतराम बिल्कुल किया जाना चाहिए, लेकिन लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अदलिया ने ख़ुद एक बात की थी कि 3 नवंबर 2007 को जो उस वक्त जनरल मुशर्रफ ने एमरजेंसी या दूसरा मार्शल लॉ कह दीजिए लगाया था, वो एक गैर आइनी था, उस पे हम लोग नहीं जाते, तो जिसकी वजह से लोगों में एक सवाल पैदा हो रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह भी बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे, अदलिया जो है अपने रवैये से और इसके साथ साथ वो मुतमईन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है उसको तकवीत मिल रही है। तो ये मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा तदब्बुर की ज़रूरत है, और मैं अभी भी तवक्को रखती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो फिर जो है वो इंतहाई, उसका मियां नवाज शरीफ का इंतहाई मोतबिर रवैया है, और मैं ये समझती हूँ कि वो तमाम सूरत हाल को बिल्कुल वो जायज़ा लेंगे कि क्या ये डीरेल होने वाली बात तो नहीं हो जाएगी। और जमहूरियत को डीरेल इस वक्त करना जो है वो मुल्क के मफाद में किसी तरह नहीं होगा, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अभी भी शायद एक तो हम अपने मुल्क की जानिब भी तवज्जो देते हैं कि कुछ हमेशा मक्तदर हल्के रहे हैं, दूसरे इंटरनेशनल जो मक्तदर हल्के हैं उनको हमेशा फ़र्द वाहिद की हुकूमत हमेशा सूट करती है। क्या वो फ़र्द वाहिद की हुकूमत लाने में कोई किरदार तो अदा नहीं कर रहे? इस वक्त इंतहाई संजीदा बातें हैं, और उन संजीदा बातों को मैं समझती हूँ कि पार्लियामेंट ही एड्रेस कर सकती है, और पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है, मैं चूंकि आवाम की हुक्मरानी पर यकीन रखती हूँ, मैं समझती हूँ कि आवाम जो है, जो 18 करोड़ किसी भी पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, जो मुल्क की आबादी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनको बहुत सुप्रीम समझती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि इदारों का टकराव नहीं होना चाहिए, अपने अपने इदारे जो हैं अपने उसमें दायरा कार में रहें, लेकिन जो आवामी इदारे हैं जिनके टैक्सी से दूसरे इदारे जो हैं तरक्की करते हैं, आवाम के जो बात है उसको तकरीम दी जानी चाहिए, वही सुपीरियर हैं। और मैं चूंकि हमेशा सियासतदानों की हामी रही हूं, तो मैं समझती हूं कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है, और उसी को हमें बालादस्ती उसकी बरकरार रखने के लिए इकदाम करने चाहिए।
शुक्रिया फौजिया शाहिद, शुक्रिया। शहला रजा साहब, आप हैं लाइन पर? नहीं, शहला रजा लाइन पर नहीं है। यूसुफ अख्तर साहब, जनाब तासुर ये मिल रहा है कि अदलिया अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। 3 मिनट का वक्त है हमारे पास। यह तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तानी अदलिया हुकूमत के मुकाबले में एक पार्टी बन गई है और अपोजिशन का रोल अदा कर रही है। जी
से जो इंतहाई गलत है, जो इंतहाई गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अपना वो अदलिया एक पार्टीजन एटीट्यूड इख्तियार कर रही है, क्योंकि फैसला पीपल्स पार्टी के खिलाफ आ गया और वो अजहर मिने शम्स किस्म की बात थी। इससे याद मैं मिसाल दे चुका हूँ कि एक मरतबा नहीं 50 मरतबा वो कह चुके कि हम सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे। और वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म क्या था सबको मालूम है कि स्विट्जरलैंड में जो पैसे $60 करोड़ हैं उसके लिए ख़त लिख दिया जाए, कौम की लूटी दौलत को वापस लाने के लिए गलत ख़त लिखा था कय्यूम साहब ने, उस पर एक ख़त लिख दिया जाए। कोई ये नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि सदर मुमलिकत के खिलाफ मुकदमा चलाओ। सदर मुमलिकत के खिलाफ मुकदमा वहाँ चल चुका, उनको उसमें सज़ा हो चुकी। ही इज़ ऑल्सो ए कन्विक्टेड क्रिमिनल सो लॉन्ग एज द लॉ ऑफ स्विट्जरलैंड इज़ कंसर्न। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी तरह कौम का लूटा हुआ पैसा वापस ले आओ। तो अगर ये प्रोपगंडा किया जा रहा है तो इंतहाई घिनावना ये अपना प्रोपगंडा है, जिसके नताइज जो हैं बहुत गलत होंगे। मैं परसों भी ये अर्ज कर चुका था कि 1970 के इंतखाबात के नताइज ना मानकर भुट्टो साहब ने, पीपल्स पार्टी के बानी ने और पीपल्स पार्टी ने मुल्क से बांग्लादेश, उसको ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट का अदालत उज़्मा का फैसला ना मानकर ये मुल्क को मज़ीद इंतशार और बहरान का शिकार करना चाहते हैं, जिसका कतन न कानूनी न आइनी न अखलाकी जवाब मौजूद है। तो इस किस्म का बहरान पैदा न करें। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आप 4 साल मुकम्मल कर चुके हैं और मुल्क को तबाही के किनारे पर ला चुके हैं। कौन सी एक ऐसी चीज़ है, कौन सा मुल्क का अदारा है जिसका तकद्दस आपके ज़माने में कायम रहा?
बहुत शुक्रिया।
लोग जो हैं अवाम भूखों मर रहे हैं और चीख रहे हैं और वो खुदा से पनाह मांग रहे हैं आपकी हुकूमत से, इस किस्म की करप हुकूमत से। तो खुदा रा अकल के नाखून ले और मुल्क को तबाही से दो चार न करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो कायम रहने दें। सुप्रीम की सियासत का सियासी माहौल काफ़ी गर्म है और जहाँ हिजब अख्तलाफ हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है सियासी इंतशार फैलाने का और अदलिया के मुताबिक मुतालिक गलत फहमी फैलाने का, वहीं हुकूमती हलकों की जानिब से अपोजिशन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अपोजिशन मुल्क में सियासी इंतशार की कैफियत पैदा करना चाहती है और इसी के साथ हुकूमती हलकों में और हुकूमत के तरफदार हलकों में अदलिया के ताल्लुक से भी ये तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान की अदलिया बकौल उनके गैर जानिबदार नहीं रही है और हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। इस सिलसिले में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thereteofsahartv.ir। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।